सब कुछ कर सकते हैं, करुणा सागर है एवं परम सूर्य भी है, फिर भी इसी क्षण अपने अहितों का कृपा से साधका का कल्याण क्या नहीं कर देते, ये प्रश्न है। तो और भी आगे बात है, मैंने इस बात को सुन गया, भगवान सब कुछ है परंतु भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, केवल कल्याण ही चाहने वाले साधु बहुत कम हैं। साधुओं के मन में भी दूधी दूधी इच्छाएं कई रहती है, तो जबरदस्ती भगवान नहीं करते। जैसे आपके घर पर कोई साधु भिक्षा के लिए आवे, उसको आप ना कह सकते हो, देरी कर सकते हो, और आप कुछ न बोलो तो ही वो जा सकता है, देने पर भी जा सकता है, नहीं देने पर भी जा सकता है। पर डाकू आ जाता है, उस वक्त आपको हम देना नहीं चाहते, ये नहीं सुनेगा, हमारे यहां चीज न लगेगी नहीं सुनेगा, घर में कोई नहीं है ऐसा नहीं सुनेगा, वो डाकू होता है। तो जबरदस्ती काम डाकू करते हैं भगवान और महात्माओं का एक कायदा है, वो जबरदस्ती नहीं करते। जब तक वे भोगों को चाहते हैं, भीतर से भोगों को महत्व देते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक वो संसार को छुड़ाते नहीं। भगवान छुड़ा सकते हैं, पर किसका कि उसके भोगों के त्याग की, संसार के त्याग की उत्कट अभिलाषा है, इसमें बेचैनी होती है, कुसंग से बेचैनी होती है, भोगों से बेचैनी होती है। वो चाहते हैं त्याग करना और केवल मुक्ति चाहते हैं, तो वो मुक्ति करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। ऑपरेशन करने वाले भी जिसका ऑपरेशन करते हैं उसे लिखा लेते हैं, भाई मर जाए तो कोई बात नहीं, खतरा नहीं है, तब उसे ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो बड़ा ऑपरेशन नहीं करते। सब कुछ छुड़ा कर केवल कल्याण कर दे, ये भगवान का काम नहीं है। कोई प्रार्थना करे कि महाराज मेरा कल्याण हो जाए, उसके बिना वो रह न सके, उसका काम करते हैं, ये भगवान का कायदा है। सामर्थ्य कम है, ये बात नहीं है। निरंतर साधन भगवान सत्संग करते हैं, प्रभु से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, वे सुनते क्यों नहीं है? प्रार्थना भीतर से नहीं होती है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त वत्सल कान में, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच हट ही जाए। असली भीतर से ऐसा होता नहीं है। एक संत थे, कुछ सामर्थ्यवान थे वो। तो एक ने कहा कि महाराज मेरी समाधि लग जाए, कई बार कहा। तो एक दिन कहा अच्छा बैठो, ऐसे कर बैठाया और महाराज ने कुछ प्रयोग किया उन पर, तो वही बना और महाराज महाराज मेरे तो सब कुछ खो गया, खो जाएगा सब संसार खो जाएगा मेरे को। तो महाराज ने उसको बंद कर दिया। तो संसार खो जाएगा इसका डर लगता है, हमारे मन को अच्छी लगने वाली वस्तुएं नष्ट हो जाती है तो बड़ा घबराहट होती है, घबरा जाता है आदमी। तो मुक्ति करने का तात्पर्य सब भोगों से, सब संग्रह से, आदर से, सत्कार से, बढ़ाई से, महिमा से, सब से अरुचि हो जाए तब मुक्ति होती है। इनमें रुचि रहते हुए भगवान छुड़ाते नहीं, भगवान कसा ही थोड़े ही है जब तुम्हारे काट रहे हैं, ऐसे नहीं करते। तो तुम्हारी भीतर की लालसा जो रहती है वो रहते हुए मुक्ति भगवान नहीं करते, सच्ची बात है। कोई भला आदमी भी नहीं करता इसे। जैसे मैंने संत का कहा घर में और नाग भी चला चुप रहा तो चला जाएगा, देव तो ले जाएगा नहीं तो चला जाएगा, पर डाकू नहीं जाएगा। तो ये जबरदस्ती काम करना डाकुओं का है, सच्चे पुरुषों के भले पुरुषों का जबरदस्ती काम करना नहीं है। वे अपनी तरफ से बढ़िया समझते हुए भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, बात बता देते हैं, उसको स्वीकार कराकर करते हैं। संत महात्मा भी सत्संग में सुनने वालों को स्वीकार कराते हैं, तब उनकी सहायता भी कुछ कर देते हैं, पर अपनी ताकत के अनुसार। परंतु सच्ची चाहना चाहिए, उसके लिए कुछ भी नहीं, हम जीना भी नहीं चाहते, एक क्षण भी जीवे ये भी हमारी इच्छा नहीं है। शरीर निरोग हो जाए, मान बढ़ाई हो जाए, आराम मिले, भोग मिले, संग्रह कर रहे, बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का हो जाए, ऐसी ऐसी चीजों रहते हुए भगवान कल्याण नहीं करते। वो ग्राहक ही नहीं है कल्याण का असली, कैसे करने भगवान जबरदस्ती कैसे कर दे। के सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ है तो कोई चाहे उसके लिए सब समर्थ है। बार बार प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना भीतर से नहीं होती है, सुनते क्यों नहीं, भूल कहाँ है, किसकी है, अपनी या उनकी, भगवान की है। भूल करने वाले भी प्रभु हो सकता है क्या, कल्याण में क्षण भर भी विलंब क्यों। तो ये बात साधक की होनी चाहिए, एक क्षण भी विलंब उनसे सहा नहीं जाता। तद विस्मरणे परम व्याकुल से तदर पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल से थी। नारद जी ने अपनी भक्ति सूत्र में ये लिखा है कि सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया और भगवान की भूल एक क्षण भी उससे सही नहीं जाती। भागवत में आया है कि त्रिलोकी का राज्य सब कुछ देने पर भी आधा क्षण भी भगवान को भूल नहीं चाहते। सब कुछ मिल जाए, देवो मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, तो क्षण मात्र भी वे भगवान को भूलना नहीं चाहते। ऐसे याद करते हैं तब उनका काम करते हैं और उनको रस्से पसे रहते हैं। नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। जो सच्ची लगन होती है परमात्मा की, तो सच्ची लगन से पूरी करते हैं। भगवान है सच्चे, तो सच्ची लगन से सच्ची बात होती है, नकली लगन से काम नहीं चलता। संपूर्ण भगवान में अर्पण कर दिया, परंतु भगवान की विस्मृति क्षण मात्र भी हो जाए तो वो सह नहीं सकते, प्राण निकलने लगते हैं, भगवान की भूली सह नहीं सकते। ऐसे भक्तों को कल्याण करते हैं। ऐसे जब ध्यान क्रिया है कैसे हो जाए। अब एक बात और बताऊं, आप ध्यान दें। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते हैं बहुत, तो इन क्रियाओं से भगवान वश में नहीं होते। तत्काल कल्याण करने वाली दो चीज है, एक तो जोरदार जिज्ञासा हो, उसकी पूर्ति के बिना रहा न जाए। और मैंने ये पांच बात कही, ये कोई भी नहीं सुना थी, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात, कोई नहीं चुहाती, केवल बोध चाहते कि बिना उसके व्याकुल हो जाए। एक भगवान के दर्शन चाहते, प्रेम, तो प्रेम और ज्ञान ये चाहना से होता है। पन्नगारी सुनो, प्रेम सम भजन दूसर आन, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुण गान। सच्ची ऐसी लगन, तो लगन अपनी सच्ची नहीं है, भगवान को उलाना कितने दे दो, गाली दे दो, उसकी निंदा कर दो, कुछ भी कर दो, इसको कोई असर नहीं पड़ता। अपनापन ऋण होता है तो उसका असर पड़ता है। एक बात याद आई, आप ध्यान देकर सुने, द्रौपदी भगवान की भक्त थी और उसकी साड़ी खींची गई, उनका अपमान हुआ तो भगवान को याद किया। गोविंद द्वारका वासिन, आपका द्वारका बनाने वाले कौरवार मग्ना नाम किंग ने जाना सीखे सोड़ा, मैं कौरव के समुद्र में डूब गई हूं, क्या आप नहीं जानते हैं कैसी मेरी क्या दशा हो रही है। इतनी बड़ी सभा, द्रोणाचार्य, भीष्म जी महाराज, कृपाचार्य आदि के बड़े बड़े आचार्य, अच्छे संत महात्मा बैठे, उनमें वो गिरा दी गई, केस पकड़ करके घसीटी गई, जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीट, जैसे इतना अपमान किया। और कर्ण ने कह दिया ये वेश्या है, स्त्री तो एक पति की होती है, ये पांच पतियों की तो वेश्या है। दुर्योधन ने कहा कि तू दासी हो गई है, हमने जीत लिया है, मेरी जान पर यहां बैठ भाई तर। और दूसरों ने कई कई कटु शब्द कहे। द्रौपदी ने ये कहा कि ये मेरे को बताओ कि मैं जीती गई कि नहीं, मैं इनकी हो गई, मेरे पर विजय हो गई क्या, मैं जीती गई क्या। दूत कहते हैं दासी बन गई है, तू जीती गई है। द्रौपदी के पूछने का तात्पर्य था कि मेरे को दांव पर कैसे लगाया। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर सब राज्य हार गए, अपना आप को हार गए, अपने आप को दास बना दिया, पांच भाइयों को और अपने को दास बना दिया, अब कोई चीज रही नहीं। तो फिर शकुनी ने कहा है कि तुम्हारी स्त्री बाकी है, तो उसको भी लगा दिया, वो भी हार गए। तो वे तो कहते हैं अब हार गए। द्रौपदी का पूछना है कि जब दास बन गए पति पांचों ही, दास बनने के बाद महारानी को दांव पर लगाने की या उनको आंकड़े लगाने की क्षमता नहीं है, अधिकार नहीं है। पांचों दास बन गए और द्रौपदी दास ने, द्रौपदी महारानी है अभी, तो दास को महारानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है। तो विकर्ण बोला है, दुर्योधन का भाई था एक विकर्ण, वो बोला है कि हमारी जान में ये हारी नहीं गई है, न्याय पूर्ण नहीं आ रही है। युधिष्ठिर क्यों गए, युधिष्ठिर चुप रह गए, पहली भूल होगी दांव पर लगा दी, अब ना कहना भी बनता नहीं, हां कहना भी बनता नहीं, युधिष्ठिर चुप रहे। ऐसे मौके पर वो पूछ रही है कि मेरे को सच्ची बात बताओ, पूछने का तात्पर्य क्या है कि मेरे पर जो अत्याचार करते हैं, केस खींचे हैं और साड़ी खींच करके दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इसको नग्न कर दो। वो दुर्योधन जब गया है पांडव सभा में, वो सभा पर कथा आती है, उसमें वो पहले तो दरवाजा दिया तो भगवान के पांडवों के साथ द्वेष रखे, उनको उल्टा दिखता था, दरवाजे की जगह तो दीवार दिखती थी, दीवार की जगह दरवाजा था, जल की जगह थल दिखता था, थल की जगह जल दिखता था। तो पहले तो दीवार की लगी क्योंकि दरवाजा दिखता था, तो दरबार ने बड़े प्रार्थना करके यहाँ पधारी, इधर से आइए। इस पर गया, इस पर गया तो कपड़े ऊपर ले लिए पागा, और जल दिखा, जल था नहीं वहां, तो जमीन थी, आगे कपड़ा नीचा कर दिया, गिरे पानी में गिर गए। गिरे तो द्रौपदी हंसी ऊपर से, और अंध पिता के अंध सुसर भाख्यो कटु इम भीम, भारत कुल गारत भयो आई विचम विपत असीम। भीम से ने कहा कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। इस बात पर दुर्योधन कहता है तो लगन करो, क्योंकि अंधे ही तो राजा है, अंधे ही प्रजा है, अंधे ही सभा है। तो लाज शर्म होती तो आंखों की होती है, नेत्रों से देखे, सब अंधे है, इस बार लगन कर दो उसको। वो अपना अपमान हो गया, उसका बदला चाहता है, लगन करो, ऐसे कहता है। और हारी नहीं गई है वो, वास्तव में न्याय से उसके कहने का तात्पर्य है कि मैं हारी गई, वास्तव में तो आप चेष्टा है तो मेरा बर्ताव कर सकते हैं, पर मेरे पर विजय हुई नहीं तो मेरा क्यों करते हो। एक बात, दूसरी बात थी है, द्रौपदी अगर चाहे तो भस्म कर दे उनको। जब ये तीर खेचा गया, भगवान को पुकारा, तो तीर इतना बढ़ाया कि तीर का ढेर लगे, खेचता रहा दुशासन, तो 10,000 गज बल घटियो, अरे घटियो ने 10 गज तीर। तो वो कहा कि नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, ये कोरी सारी सारी के पुतला है कि स्त्री है, पता नहीं, निकलती चली जा रही साड़ियां, ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन हार गया, थक गया, पर 10 गज चीर नहीं है, भगवान ने कर दिया, चीर बढ़ा दिया। तो इतना काम कर दिया तो भी कौरवों को होश नहीं आया कि इसको एक स्त्री को नगर नहीं कर सके, हम कैसे विजय करेंगे। परंतु उनके तो विजय हम करेंगे ही, सब ये हार ही जाएंगे, ऐसा विचार था। कृष्ण भगवान गए हैं वहां संधि का प्रस्ताव लेकर, तो जाते समय में सबसे पूछा, युधिष्ठिर से, भीमसेन से, अर्जुन से, नकुल सहदेव से और द्रौपदी से ही पूछा। तो उन्होंने कहा भी संधि हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो कहा कि अरे भीमसेन, तुम ही संधि की बात कहते। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो मारूंगा। मत नाम कौर सतम समरेन यावत दुस्साहन से विमाम संतूर्ण याम गदयान सुयोधनोरुम तद संधि करो तो भवतांग देवते पणेन। किसी शर्त पर संधि करे तो ये युधिष्ठिर राजा तुम्हारा राजा, हम नहीं मानते। मेरे तो 3 बात है, जब तक 100 पुत्र है धृतराष्ट्र के, उन 100 के 100 को मैं मारूंगा, और कोई गुजा हमारी सेना का मार दे तो उसको मार करके 100 संख्या पूरी करूंगा, एक कोई छोड़ूंगा नहीं। मत नाम कौरव सतंग न समरे न यावत दुशासन से विमान में रस्तम दुशासन चीर खेचा है, उस दुशासन की छाती चीर करके उसका खून न पी लूं, और उस खून में सने हुए हाथों से जब तक द्रौपदी का केस संहार न करूं, तब तक द्रौपदी वीणी मांगती है। तो कृष्ण भगवान जब जाने लगे, द्रौपदी से पूछा तू क्या संदेश कहती है, तो महाराज ऐसी कड़वी बोली है कि आपको शर्म नहीं आती है, मैं पांडु महाराज के पुत्र वधू हूँ, पांडवों की 5वां की महारानी हूँ मैं, द्रुपद मेरे पिता है उनका मैं बेटी हूँ, और 5 वीर मेरे पुत्र हैं, इनके रहते हुए मेरी ये दशा हुई, और विशेष कहा कि विशेष है ना तब सखी आपकी मैं सखी हूँ, और आपके जीते हुए मेरी ऐसी दशा हुई, इतना दुर्दशा मेरी करी, पर फिर आप संधि का प्रसाद ले जाते हो, शर्म नहीं आते तुम्हारे को, ऐसी कड़वी बोली भगवान से, ऐसे कर रो पड़ी। तो भगवान ने कहा तू रो मत, वो संधि करेंगे नहीं कभी, और तू एक रो रही है, हजारों लाखों स्त्रियां रोवेगी और मरेंगे वे सब के सब, और वहां बड़े जोर से बोले भगवान, संधि का प्रस्ताव दे रहे, पहले कहना नहीं था भगवान को, परंतु द्रौपदी रो पड़ी जब कहा है कि हिमालय सलच हिमवान पी, हिमालय चलामान हो जाए, सूर्य पश्चिम को उदय हो जाए और मेदनी सतदा फले, इस मेदनी पृथ्वी के 100 टुकड़े हो जाए, ये असंभव की संभव हो सकता है, परंतु दुष्ट नहीं बचेंगे, सब मरेंगे, ये भगवान ने कह दिया द्रौपदी को। व्याकुल होकर पूछा था, ऐसे कहा, नहीं तो संदेह प्रस्ताव कह रहे, ये बात पहले कैसे कह रहे, नहीं कहनी थी, पर भक्त की अर्थ है वो सह नहीं सकते भगवान, कैसा भगत, इसमें एक मार्मिक बात है कि काम क्रोध लोभ ये मिटने चाहिए, ये जब तक नहीं मिटे तब तक भक्ति सफल नहीं होती। द्रौपदी के मन में ये आया कि दुशासन के रुद्र से खून से जब तक मेरा केस न भीग जाए तब तक मैं कभी बेड़ी नहीं बांधूंगा। तो वहां कहा कि जाओ भले कुरुराज में धारी दूतवर वेश, तय वहां भूलन जाइयो केशव द्रौपदी केस, ये द्रौपदी केस मत भूल जाना, खुले पड़े मेरे केस, दुशासन नहीं मरेगा तब तक उन खून नहीं सूंगा, तब तो मेरा ये केस खुला रहेगा, कितना द्वेष है उसके मरे बिना मैं मानूंगी नहीं। परंतु भगवान कृष्ण पर विश्वास है, एक भगवान पर अटल विश्वास हो, दूसरे गुणों की तरफ अवगुणों की तरफ भगवान देखते ही नहीं, एक अनन्य भाव कृष्ण पर हो, ये भाव सच्चा हृदय का प्रेम का ऐसा भाव हो, अपनापन का भाव हो, उस अपनापन के कारण वो रो पड़ी कि आप वह संधि का वस्त्र हो चाहते हो, उन दुष्टों के साथ में संधि करना चाहते हो, तो भगवान ने कहा संधि होगी नहीं, ये दशा होगी और वे मरेंगे सबके सब, इतना उसे तेज था भीतर में, परंतु भगवान पर विश्वास। मार्ग बात यह है कि द्वेष मृत्यु रहते हुए भी भगवान का प्रेम अटल विश्वास द्रौपदी के हृदय में था, ऐसा अटल विश्वास होने पर भगवान गिरते ही नहीं कि इसमें लक्षण है कि नहीं है, कब को दूर हो गए कि नहीं हो गए, देखते ही नहीं, वो एक प्रेम देखते, एक अपनापन देखते, अपनापन अपनापन जितना काम करता है कोई नहीं काम करता है, बड़ी बड़ी योग्यता बड़े बड़े अधिकारी हो जाए, परंतु भगवान के साथ अपनापन जब नहीं होता तब तक तो भगवान कुछ नहीं करते। अनन्यास्तो माम ये जना परिपाश से अनन्य भाव से अनन्य स्वयं अनन्य बन जाए कि मेरे को केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल मेरा ऐसा तो मानते हैं, मन दूसरा न कोई मानने वाले कितने हैं अपने भाई बहनों में, ये सोचो जाए। अनन्य चेता सत्यम अनन्य तो एक भगवान का ही भरोसा और किसी का भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं, किंचित मात्र भी एक भगवान का भरोसा है। अनन्य भाव से नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं सुलभ होता हूँ, तो ये अनन्य भाव जब तक नहीं होता तब तक भगवान पर जिम्मेवारी आती नहीं। कितनी विशेष बात है, संधि का प्रस्ताव जाकर पहले कह दिया सब मरेंगे, सब नष्ट होगा, सब का सर्वनाश होगा, कितनी बात विशेष कही, पर भरोसा भगवान पर है द्रौपदी का, ये तीर खींचा गया और फिर द्रौपदी थक गए, तब महाराज वहां से चली गई द्रौपदी भीतर, एक वस्त्र को द्रौपदी थी, एक वस्त्र वो उस समय में स्त्री धर्म में थी, तो उसने पहले कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी सभा में, मैं जाऊंगी नहीं, मैं अशुद्ध अवस्था में हूं, परंतु वो नौकर तो आ गया, दुर्योधन दुशासन को भेजा कि वो दासी है हमारी, उसको ले आओ, खेच कर केस खेच कर चलो, पकड़ कर ले आया दुशासन। द्रौपदी ने देखा कि सभा है उसमें कोई नहीं करेगा, कोई द्रौपदी के पक्ष में एक कर्ण विकर्ण के सिवाय कोई नहीं बोला उस पक्ष में, ऐसी बात थी। जब ये वहां से छूट गए तब छोड़ दिया, तब द्रौपदी गांधारी आई है धृतराष्ट्र के पास में, आप कर क्या रहे हो, एक शब्द कह देगी तो भस्म हो जाओगे सब, ये पतिव्रता स्त्री है, मामूली नहीं है, आप जानते नहीं इस तेज को, वो बोलते बार बार कि मैंने हारी है कि नहीं हारी, अर्थ क्या हुआ कि मैं एक बात कहूं क्या दशा होगी, पर मेरे द्वारा कोई अनर्थ न हो जाए, कोई साप दे दूं, तो सच्ची बात क्या है ये जानना चाहती है। धृतराष्ट्र को कहा कि तुम जल्दी करो उनको राजी करो। गांधारी ने कहा, तुम समझते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो। गांधारी पतिव्रता तेज थे, जब इसने सुना कि तुम्हारा जो पति बढ़ने वाला है उसकी आंखें नहीं है, तो द्रौपदी ने अपने आंख बांध ली, आंख वाली पट्टी, कि जो सुख पतिदेव को नहीं है वो सुख मैं नहीं लूंगी। कितनी ऊंचे दर्जे की पतिव्रता है। वह कहती कि आप पतिव्रता के तेज को समझते नहीं हो, जल्दी राजी करो। तब द्रौपदी को बुलाया धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी तुम क्षमा कर, तुम क्षमा कर दे और तुम मेरे से वरदान मांग, क्या चाहती है? तो द्रौपदी ने कहा, मैं यही चाहती हूं कि मेरे पति सब दास भाव से छूट जाए। और क्या चाहती हो? कि मेरे कोई पुत्र हो, उन्हें कोई दासी दासी पुत्र न कहे, अगर ये दास भाव श्रोता हमारा छूट जाएगा, जिसान का छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर हमारे पति समर्थ है, मेरे को राज्य दूजा नहीं मांगना है और कुछ नहीं मांगना है, इतना ही कहा उसने। फिर जुआ खेलाओ, जुआ के बीच में बात करो, ये छोड़ दो सभी, ये सब छोड़ दिया गया। दोबारा बुलाने के लिए विदुर जी महाराज को भेजा कि तुम जाओ युधिष्ठिर को हो का यहाँ आ जाओ, पैसा जुआ खेलेंगे। तो विदुर जी महाराज गए, वे जा रहे थे अपने अपने क्या नाम इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, तो बीच में जाएगा कि मेरे बड़े भाई है धृतराष्ट्र, तो मेरे को तो आज्ञा मानने इस बात आया हूँ, मगर मेरी सलाह है कि तुम दोबारा मत जाओ, वहां जाने में भला नहीं है, अब तो तुम घर पर चले जाओ, छुट्टी हो गई, कोई हल नहीं है। ऋषि महाराज ने कहा कि वे मेरे बड़े बाप है, धृतराष्ट्र है मेरे बड़े पिता है, ताऊ थे ना, ताऊ को बड़ा बाप कहते थे, नमस्कार के जो बड़ा बाप कहता है, बड़ी माँ कहते हैं उसको, गांधारी को बड़ी माँ कह बोलते पांडव, ये माँ है हमारी, बड़ी माँ है, माँ से भी बड़ी पूजनी आदरणीय माँ है, और वो आदरणीय धृतराष्ट्र को मानते, तो महाराज का हुक्म हो गया मैं जाऊंगा। तो फिर दूसरे महाराज ने माना और फिर गया, दोबारा जुआ खेला, उसमें 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये 13 वर्ष तक अज्ञातवास में अगर प्रकट हो जाए तो फिर 12 वर्ष वनवास, और नहीं प्रकट हो तो उसके बाद में तुम्हारा राज तुम्हारा हमारा हमारा, ऐसी बात हुई थी। 12 वर्ष हो गया, 13वां वर्ष गुप्त तीर्थी वहां विराट में रह गए, अंत में वो प्रकट हुए, तब का युद्ध ने कहा कि नहीं 12 वर्ष नहीं हुए हैं, पर उसे एक कहने से क्या विष्णु जी सब कह रहे भाई न्याय है, ये 12 वर्ष हो चुके हैं, 13वां वर्ष अज्ञातवास भी हो चुका है। फिर कहा कि मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। सुर्योधन ने यहां तक कह दिया, रावधि तीक्षण्या सूच्या विद्य दग्रेण केशव, सुई रानी तीखी, मामूली सुई मोटी नहीं, तीखी, और तीखी सुई का अग्रभाग जितनी टिके इतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान प्रस्ताव लेकर गए, उन्होंने कहा तुम कम से कम 5 ग्राम दे दो तो ये 500 पांडव अपने रह जाए। कहते महाराज एक सूची सुई का तीखा तीखा भर में नहीं टिके चीज नहीं दूंगा, आप ज्ञान मिला। कहते हैं फिर भगवान आए तो भीमसेनों का कुंभ सम भीम ने कहा बाप नहीं होगी वो तो नष्ट ही करूंगा मैं, ऐसा रहा। तो द्रौपदी का कितना अनन्य भाव है भगवान पर, जो भगवान पर भी गुस्सा आता है तो गुस्सा किस बात को लेकर आता है, अपनापन लेकर के आते हैं। आप स्वयं संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हो उन दुष्टों के साथ में, जिन्हें मेरी ऐसी दुर्दशा करी, अरे अन्याय पूर्ण सब काम कर रहे हैं, फिर भी आप संधि का प्रस्ताव लेकर जाते। भगवान क्यों गए कि मेरे पांडवों को कोई दोष नहीं लगा दे, उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने तो पहले ब्राह्मण को भेजा है संधि का प्रस्ताव लेकर, फिर भगवान स्वयं गए हैं, उन्होंने सबने सुनाया ठीक तरह से, आप युद्ध मत करो, युद्ध में भला नहीं है, आपका नुकसान है, ऐसा किया। दुर्योधन कहता है हम तो युद्ध करेंगे, दुर्योधन समझता है भीष्म है द्रोण है बड़े बड़े हमारे पक्ष में योद्धा लोग हैं, उनके सामने कौन टिकेगा। युधिष्ठिर महाराज और भीष्म जी महाराज से अच्छी इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मरे, नहीं तो मर ही नहीं सकते, कैसे मार देवे। अश्वत्थामा तिरजी भी आजकल भी अश्वत्थामा विद्यमान बताते हैं कि ये मेरे पक्ष में है, मेरे को कौन मार सकता है, उसके बड़ा ये बल था और मन में बड़ा भारी अभिमान था, अपमान से ताड़ित होकर के ये बात करता है, तो उनका भाव कितना विलक्षण है। भीमसेन इतना था, परंतु जब तीर हरण किया उस समय भीमसेन ने चुपचाप बैठा है और दूसरे सब चोरे विष्णु महाराज ने नीचा मस्तक कर लिया। भीमसेन उस समय में क्यों हाथ मसल कहता है कि ये इनके ये जो जितना किया है ना, इसका फल मैं दूंगा। उसे प्रतिज्ञा करेगी, 100 के 100 बेटा मारूंगा मैं अपने हाथ से और इनका खून पीऊंगा दूसरा सन की छाती का। ऐसी बात करी उस भीमसेन ने। और एक बात और विचित्र कह दी, माँ भारत में आती है, अरे सहदेव जा ला ला आग ला आग। युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, उस आग से इनके हाथ जलावे, ऐसे बोला। अर्जुन कहते हैं महाराज क्या कह रहे हो, हमारे बड़े भाई पिता के सामने तो जरा थोड़ी दी है मैंने, ये तो बात किया उनके ऐसे हाथ मसलने लगा। उस क्रोध है जो रुओं से चिंगारियां उठने लगी अग्नि की इतना। मैं फिर भी विलक्षणता ये देखो कि विलक्षण महाराज की आज्ञा नहीं है, कुछ नहीं करते, नहीं तो उसी समय वो तैस नैस करते उस समय भीमसेन। परंतु महाराज की आज्ञा नहीं है, इतने बल को रोक करके रख लेना, लोग दिया इतना अपमान सह लेना, ये महाराज वही महापुरुष थे जो सह सकते थे, दूसरा सह नहीं सकता। सुनते वा सुनने वालों का खून उबलिया हुआ है, ऐसी बात है। परंतु वो सब सहा, तो अनन्य भाव होना चाहिए भगवान पर, अनन्य भाव। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। द्रौपदी इतनी बात होते हो भी ये भाव जो भगवान के प्रति है, तब कृष्ण प्रिया सखी, मैं आपकी प्यारी सखी हूं। भगवान ने भी कहा है दूसरे प्रसंग में कि भगवान की बहन है ये सुभद्रा, तो भगवान बोले क्या सुभद्रा मेरी बहन है, क्या द्रौपदी मेरी बहन नहीं है क्या, जैसे मेरी बहन मारे को प्यारी है छोटी बहन, तो ऐसे द्रौपदी भी मेरी बहन है, इसके दुखों को मैं नहीं सह सकता हूं। ऐसी विलक्षण बात है, तो अपनापन होता है इसमें शक्ति है। ये भजन ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि में वो नहीं है जो भगवान द्रवित हो जाए, वो नहीं है। अगर अपनापन से द्रवित हो जाते हैं भगवान, वहां भगवान ठहर नहीं सकते, वे केवल भगवान में ही है। आप मेरे हो और आपके रहते हुए मेरी ये दशा हुई, तो वो नहीं सह सकते। तो आप अगर चाहते हो भगवान कल्याण कर दे, सबका कल्याण कर दे, अरे सबका क्या कर दे, एक भी कोई सच्चा हृदय का हो तो उसका हो जाता है। जैसे मीराबाई का था, ऐसा भाव होना चाहिए ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और कोई हो ही नहीं, अनन्य भाव, केवल भगवान पर अपनापन। ये क्रियाओं से इतना काम नहीं होता जैसा इस भाव से काम होता है। भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करते हैं तो सब क्यों नहीं करते, तो भगवान असमर्थ थोड़े ही है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, करुणा सागर भी है, सबके सूर्य भी है, सब कुछ होते हुए भी जबरदस्ती नहीं करते, कल्याण के लिए भी जबरदस्ती नहीं करते भगवान। उसकी सच्चाना करते ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथे हो जाने हम। जो अनन्य भाव से भगवान में लगते हैं, वो तो अनन्य भाव से भगवान उनको उद्धार करते हैं। तो भगवान पर जो अनन्य भाव है, विश्वास है, ये जितनी दामी चीज ऊंचे दर्जे की है, इतनी ये क्रियाएं नहीं है। सत्संग कर लिया, जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, पुस्तकें पढ़ ली, ये सब श्रेष्ठ, सब उत्तम है। उपवास करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब करो, सब श्रेष्ठ है, अंतर्गत शुद्ध करने वाले हैं। परंतु भगवान पिघलते नहीं है, भगवान पिघलते हैं सच्चा अनन्य भाव, द्रौपदी के समान अनन्य भाव, तो भगवान से रहा नहीं जाता फिर। ये यथामाम प्रभु, जैसे वो शरण होते हैं वैसे काम करते हैं, तो ऐसे शरण हुए बिना भगवान काम नहीं करते। मैं कहता हूँ भगवान सूर्य है, भगवान सर्व समर्थ है और भगवान परम कृपालु है, इतना होते हुए दुनिया का कल्याण नहीं करते, अब आप भगवान को दर्शन क्यों नहीं देते। दुनिया इतने दुख पा रही है, उनका उद्धार कर देना चाहिए कि दुख नहीं पा रहे हैं। साधुओं को, ब्राह्मणों को कितनी कितनी दशा दुर्दशा हो रही है, सच्चे आदमी निहत्थे आदमी उनको गोली से मार दिया गया, ऐसा होने पर भगवान प्रकट क्यों नहीं होते। भगवान प्रकट होने का ये समय नहीं है। त्रेता युग में सतयुग, त्रेता दूसरा जो उस युग में राम जी प्रकट हुए, उस समय में ऋषि मुनि जंगल में रहने वालों को मार मार के रास खा गए, हड्डियों का ढेर लग गया त्रेता के समय। तो कलयुग समय कैसा होना चाहिए? बहुत बाकी है अभी तो, अभी तो साधु संत भी खुले फिरते हैं, अच्छे से ब्राह्मण पंडित अच्छे वही रहते हैं, गगुआ अब तक जीव है कुछ, हत्या तो बहुत हो गई है परंतु फिर भी अच्छे वंश है। महाराज इस प्रकार का तो विचार है कि हिंदू और गाय दो दो तो रहने ही नहीं चाहिए, इनका तो नाश ही कर देना है, इतने चले हुए हैं, अब इनकी क्या होगा दशा वो भगवान जाने, पर दुर्दशा होने वाली इसमें संदेह नहीं। मैं जानता नहीं हूँ भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, मैं भविष्य भुगता नहीं, अंतर्यामी नहीं, जानकार नहीं, परंतु अन्याय कर रहे हैं उनका दंड तो भोगना पड़ेगा। कौरवों ने बहुत अन्याय किया, पांच भाई पांडव है जिसमें एक भी नहीं मरा, और 100 भाई थे जिसमें एक भी नहीं बचा। द्रौपदी के पुत्र पांचों थे, वे भी बड़े महारथी थे, बड़े युद्ध करने वाले, सोते हो अश्वत्थामा ने सोते सोतों को झगड़ा काट करके मस्तक ले जाकर दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन की ऐसी बात थी कि हर्ष और शोक दोनों साथ में होंगे तो मरेगा, तो उनको ला कर दिया। पांच पांडवों का ये सिर है, देखा ये पकड़ देगा जो फीस गए, ये पांडवों का सिर नहीं है, पांडवों का फिर नहीं है, उनके कच्चा खोपड़ी होती है बालकों की, जो दसराज है ये तो इस बड़े विचित्र से दुर्योधन मर रहा था, उसकी जांग तोड़ी है। उस समय में आ गए हैं बलदेव जी महाराज, तो गदा युद्ध हो रहा था भीमसेन का और रुद्रदेव का, उस समय में भीमसेन ने गदा मारी जोर से, टांग तोड़ दी, छाता तोड़ दी, तो महाराज बिगड़ गए बलदेव जी, ये कृष्ण जी क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा है क्या महाराज, के कमर से नीचे गदा का प्रहार नहीं करना चाहिए, सिर पर गदा का प्रहार नहीं करना चाहिए, इस बीच सर में गिरार प्रहार हो, उसने जांग तोड़ दी। भगवान ने कहा, इसने कहा था कि द्रौपदी मेरी जांग पर यहाँ बैठे, तो उस समय इसने प्रतिज्ञा की थी जांग मैं तोड़ूंगा, अपनी प्रतिज्ञा शक्ति करी है महाराज, इन्होंने अन्याय नहीं किया है। प्रतिज्ञा है इतना होने पर महाराज धर्म का कितना विलक्षण बात है। एक और विचित्र बात बता मैं, इतने बड़े भारी समर्थ पांडव जिनके पक्ष में भगवान और पक्ष में नहीं घोड़े हांकते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, अर्जुन को हाथ देकर चलाते हैं, पैसा आप चढ़ते हैं सब घोड़ों में लगाम पकड़े हुए रहते हैं, ऐसा रस चलाते हैं जोर से, सब काश करते हुए भी भीमसेन कितना तेज, परंतु महाभारत पूरा पड़ जाइए कहीं भी भीम से नाराज नहीं हुआ, एक अक्षोणी सेना दुर्योधन को दे दी शस्त्र के सहित, और आप अकेले आए निशस्त्र, तो किसी पांडव ने ये नहीं कहा कि ये क्या किया हमारा सांपों को दूध पिला दिया, इनको एक अक्षोणी सेना दे दी, सूर्य कृतवर्मा सेनापति थे, ऐसी सेना दे दी, किसी ने कोई चू नहीं करी, कोई वचन नहीं निकाला किसी नहीं, भीमसेन तो खुला बोल रहा है वो ही नहीं बोला, भगवान जो करे ठीक है, तो भगवान पर कितना विश्वास है, एक अक्षोणी सेना दे दी, एक अक्षोणी शली की सेना ले ली, तब महाराज फिर 11 अक्षोणी 7 अक्षोणी, नहीं तो 9 अक्षोणी सेना होती, 2 सेना दुर्योधन ने अपनी चालाकी से पांडवों की सेना ले ली, जिन पांडवों की सेना हो गई 11, ये हो गई 7, तो भी 7 सेना कहीं भी ऐसा तेज था महाराज, संघ बाजे तो धर्षा घोषो धारतराष्ट्र नाम हरियाणी बजारियत, धर्षराज के संबंधियों के हृदय विदीर्ण हो गया संघ ध्वनि सुन करके, और 11 अक्षोणी की सेना के बाजे बजे, इतनी आवाज से ही महाराज पांडवों पर जोर नहीं पड़ा, जो पाप करते हैं अन्याय करते हैं उनका हृदय ऐसा कमजोर हो जाता है, वो सह नहीं सकते, जो धर्म पर है अपने ठीक तरह से, चाहे एक भी क्यों न हो वो शेर की तरह गरजता है, उसको भय किस बात का है ही नहीं, मैंने अन्याय किया ही नहीं, किसका किसी का दुख दिया ही नहीं, तो डर किस बात का है, चाहे मर जाए बलन तो हृदय में घबराहट नहीं होती, और अन्याय करने वाले कांप उठते हैं महाराज, उनका अन्याय वो खा जाता है, ये अन्याय मामूली जीता है मामूली नहीं है, खा जाता है, ये उसका नाश कर देता है, इस वास्ते भाई अन्याय मत करो, न्याय करो और भगवान से पुकारो, और एक त्याग करो भीतर से, और भगवान पर विश्वास, और सबसे बढ़िया विश्वास है भगवान में अपनापन, भगवान मेरे हैं। जैसे भोला बालक माँ को कहते हैं माँ मेरी है, पूछ रहे क्यों है तेरी माँ, ये क्यों बन, उसे कपड़ा अच्छा है, गहना उसे अच्छा है, शरीर भी ठीक है, अच्छी है, सुंदर है, ये माँ नहीं है, काली कलूटी गहना कपड़ा नहीं, वो माँ मेरी माँ है, मेरी माँ। उस माँ के पने से अपनापन है, वो अपनापन और भी नहीं हो सकता। ऐसा भक्त का भाव भगवान में हो गया, अपने मेरे भगवान है, मृत गिरधर गोपाल दूसरा न कोई नहीं है, मेरे एक भगवान है, ऐसा अनंत भाव जहाँ होते हैं, वो ऐसा अनंत भाव वालों के भगवान सदा रक्षा करते हैं। तो भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते, सबको दर्शन क्यों नहीं देते, सबका उद्धार क्यों नहीं करते, भगवान का कानून तो समझ लो। ऐसी बात है, द्रौपदी कितना कष्ट हुआ, पर द्रौपदी कितनी विलक्षणता है, उम्र भर में कहीं भी अपने पतिव्रत का तेज उसने कहा नहीं, श्राप नहीं दिया, किसी को नहीं, कितना दुख दिया, किसी का था द्रुपद राजा थे, उसका साला था, तो उसने बुरी दृष्टि से देखा द्रौपदी। द्रौपदी सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर, भारिया रूप होती शत्रु रूप होती, भारिया शत्रु के समान थी, पुत्र शत्रु का पंडित, ऋण करता पिता शत्रु, माता से व्यभिचार नहीं, और भारिया रूप होती शत्रु थे, पुत्र शत्रु अपंडित, ऐसा बात है। तो सुंदर बहुत थी, किसी बहुत चाहता था, किसी में हजारों हाथियों का बल था, तो उसने कुछ किया, तो बहन ने कहा कि जाओ मदिरा ले आओ हमारे भाई के घर से, द्रौपदी वहां शैलन जी बनी हुई थी, नौकर बनी हुई शैलन जी, चंदन करती थी और उनकी करती थी सेवा, तुम जाओ ले आओ। द्रौपदी ने कहा कि मेरे को मत भेजो, ठीक नहीं है, कहीं तुम जाओ मदिरा ले आओ। इसने कह दिया बहन ने भाई से कि मैं द्रौपदी को तेरे घर भेज दूंगी, तो भेजा वहां, उसी का दे दो कि भीतर आओ, कहते भीतर नहीं जाऊंगी, लेना हो तो बाहर दे दो, कहते मैं भीतर आओ मैं नहीं लूंगा। तो द्रौपदी वहां से चलती, पीछे आया कंक भट्ट जो ऋषि मारे बने हुए थे, राजा द्रौपदी के साथ में पासा खेल रहे थे, उसके पास पीछे जाकर के उसने लात मारी द्रौपदी के जाती हुई को, तो लात में गिर पड़ा वो, कोई के सूर्य भगवान ने रक्षा करी, वो गिर गया। ऐसी दशा हुई, रात्रि में जब सब सोए थे तो भीमसेन के यहाँ पहुंची द्रौपदी, तो भीमसेन ने कहा अभी रात्रि को तू कैसे आई, ये कोई मिलने का समय है कि मिलने का समय, आप देखते हो मेरी दशा क्या हो रही है, मैं बड़ा अपना दुख के दिन निकालने के लिए आई हूँ, और इस पर कीचक मेरी दुर्दशा करता है, खोटी नीयत से मेरे को बताता है, आपकी मैं रहती हुई ऐसी मैं दुर्दशा से हूँ, इसका दुष्ट स्वभाव दुर्दशा हूँ, ऐसे अगर रो पड़ी है। भीमसेन ने कहा तुम चिंता मत कर, अब समझ ले गए किसी मर गया, मर गया किसी, यू ही समझ ले, अब तुम यू करना उस कीचू को समय दे दे रात्रि का, जहां ये गाना बजाना होता है, अर्जुन सिखाते हैं लड़कियों को गाना बजाना नाचना, ये सिखाते हैं, वो रहता है खालिज में, तो वो दे दे वहां आप आ जाओ रात्रि को, ऐसे उड़ा लेना। भीमसेन वहां जाकर सो गया, अंधेरी रात थी, किसी ने जाकर पकड़ता है यो, लोहे की तरह हाथ, ये क्या बात है, ये तो द्रौपदी तो नहीं है, कौन है तुम, कौन क्या है, क्या ऐसे किसी बहुत बलवान था, सब राज्य काम करता था, वो सारा होते हुए भी करता था, वैसे हाथ में जो करे से होता था। भीमसेन भिड़ गए महाराज, तो भीमसेन ने ऐसा नसल करके मारा जिसमें ये बीच की तो एक थैली और ये हाथ और पांव और माथा घुसेर दिया, इसके भीतर एक थैला बना दिया, थैला बना करके और मकान के थम्बे के नीचे गाड़ दिया। सुबह देख तो किसी मर गया, देखा भाई क्या हुआ, किसी को मर गया, किसी को कौन मार दिया महाराज, बहुत बड़ा बलवान था ये, इसमें मसल दिया। अब उसको ले सके भाई सो जलाने के लिए ले गए, तो वह द्रौपदी चिल्लाई, कीचक का मन इस द्रौपदी में रहा, इसको क्षति कर दो, साथ में जला दो उसको, क्योंकि इसको मन रह गया उसका। ऐसे वो चिल्लाती कोई रक्षा करो मेरी, ये मेरे को देखो ले जा रहे हैं जलाने के लिए। तो भीमसेन रसोई बना रहा था, रसोई बना सुना सुना तो ये चला महाराज चंद्रिका में तो लिखा है प्राकार डहावत चला वीर, जैसे बोली बाढ़ और उसमें सूर निकल गया भीतर, ऐसे दरवाजे बिना ही बीच में से निकल गया भीमसेन। और जार देखा और वे सब ले जा रहे थे इसको पकड़ करके, और चिता बनाई, चिता बना करके उस पर वो अपने किसी को पता लिया, इसको पकड़ करके जलाने के लिए तैयार हुए। इतने भीमसेन सरोवर था उसे किनारे मसान थे, सब मिट्टी लगा दी अपने सर, जोर से चिल्लाए करे अरे कौन ये अन्याय करने वाला, इसे स्त्री पर अन्याय करते हैं। ऐसे कर पूछा, एक ताड़ का वृक्ष था बड़ा लंबा, उसको उखाड़ कर ले लिया हाथ में, वो कंधे पर लिया पहुंचे, वो चिल्लाई गई जोर से, तो मेरा चिता जली उधर, द्रौपदी को कहा तुम जाओ, अरे जो आए थे मार मार करके चिता पर फेंकते रहे, मरना और चिता पर जलना साथ ही कर दू सब गए, दूर तक जावे तो ताड़ का वृक्ष लंबा था उनके ऐसे फेंक लगा जैसे मतलब मूर्छित तो यार मर जाए, उनको सबको मार दिया, सौ भाई थे खींचे को सौ को ही मार दिया भीमसेन ने, मार कर जला दिया। द्रौपदी चली गई, द्रौपदी जाती है गांव में तो सब लोग जैसे नई बहू ऐसे ऊँटा निकाल दे ऐसे सब पुरुष यूं फिर जाते हैं कि इस पर दृष्टि पड़ गई तो दशा वो होगी जो किसी की होगी, हमारी ये भी स्थिति पड़ जाए, ऐसे कर गया। वह पहुंची भीतर में तो महारानी ने कहा कुछ किसी की बहन ने कि तू यहां से चले जा, देवी चले जा। पति ने आदर कहा कि इसको चले जाओ कहीं भूल से भी मैं आता हूँ इधर मेरी दृष्टि पड़ गई तो मौत आ जाएगी। तो द्रौपदी ने कहा कि हमारे में ऐसे समर्थ हैं जो मेरी रक्षा करने वाले, मैं बिना कसूर किसी को नहीं मारते, तुम कोई मत डरो, तुम निशंग करो, ये तो दुष्ट कसूर करता है तो वो मारा जाता है। ऐसा बड़ा भारी असर पड़ गया द्रौपदी का भी, महाराज ऐसे ऐसे कष्ट सह लिए, पर द्रौपदी ने वहां भी नहीं किया है। द्रौपदी ने वहां क्या जान लात मारी है उस जगह, कहा कि ऐसे ऐसे बड़े भारी वीर है वे क्यों नहीं रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने कहा जो पतिव्रताएं होती है उसकी रक्षा करने की दीदी की जरूरत नहीं, वो अपने तेज से तो खेलो 50 खेल देंगे। भीमसेन बैठा था वहां, एक बहुत बड़ा कीकर का वृक्ष था बबूल का, उसने देखा युधिष्ठिर ने कहा देखो भाई तुम रसोई आओ कीड़ा ग्रंथ तुम्हारे काम की नहीं है, सूखी लकड़ी काम की आती है, मगर वो उच्च आकार करने वाला नहीं, वो तो काटा संकेत से कहा ऐसे बड़े भाई सूरवीर थे हमारा, उन्होंने कितनी कितनी पुत्र सही 12 वर्ष भगवान में सहा, बन के जंगल की लकड़ियां घास फूस लेकर कुटिया बनाई उसमें रहे थे 12 वर्ष तो पाते रहे, परंतु कभी अपने तेज को नहीं किया, कभी अधर्म नहीं किया। धर्मराज के महाराज में बड़ा बल था धर्म का, जहाँ धर्म है वही धर्मराज खुद थे वो, ऐसी बात है। तो भगवान पर कहते हैं दोष किसका है, भगवान का है, दोष भी अपने विश्वास का है, विश्वास नहीं भगवान पर, श्रद्धा विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तुलसीदास, ये विश्वास द्रौपदी का था भगवान कृष्ण पर, उतारना कर सकती जोर से कह सकती है तुम्हारी लज्जा नहीं आ रही है, जा रही हो सुनने का अवस्था होती है, भगवान का तो रोगा जो होगा सब ठीक होगा। ऐसी बात नारायण 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 नारायण।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा बोस कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 4 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।